एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हर पल हमारे चारों ओर है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से, आप कह सकते हैं, ओझल रहती है। मैं बात कर रही हूँ टाइपोग्राफी की।
टाइपोग्राफी?
हाँ, यानी अक्षरों और शब्दों की कला और उनका विज्ञान भी।
बिल्कुल, ये वो अदृश्य ताकत है जो तय करती है कि हम लिखी हुई चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे पॉल लूना। उनकी दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं टाइपोग्राफी और टाइपोग्राफी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आज हम उन्हीं के विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
और ये चर्चा इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्या खास है इसमें?
जरा सोचिए ना, सुबह के अखबार से लेकर रात को सोने से पहले फोन पर हम जो स्क्रॉल करते हैं,
हाँ,
हर वक्त टेक्स्ट ही टेक्स्ट। बिल्कुल, तो हम लगातार टेक्स्ट से घिरे रहते हैं।
हाँ।
और ये सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है।
हाँ।
इनका डिजाइन, इनका लेआउट, मतलब सब कुछ हमारे समझने के तरीके को प्रभावित करता है।
हाँ, लूना हमें यही सिखाते हैं कि टाइपोग्राफी सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो एक तरह से कम्युनिकेशन का, मतलब संचार का एक बुनियादी ढांचा है।
सही कहा। और ये सिर्फ डिजाइनरों का काम नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए मायने रखता है जो पढ़ता है या लिखता है।
तो फिर चलिए पहले ये जानते हैं कि पॉल लूना हैं कौन, क्या बैकग्राउंड है इनका।
पॉल लूना टाइपोग्राफी और ग्राफिक कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के टाइपोग्राफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है।
यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, ये तो शायद इस फील्ड में दुनिया की टॉप जगहों में से एक है ना?
हाँ बिल्कुल, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। लेकिन जो बात लूना को और खास बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ एक एकेडमिक नहीं है।
अच्छा।
उनके पास जबरदस्त प्रैक्टिकल अनुभव भी है। उन्होंने सालों तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए बुक डिजाइनर के तौर पर काम किया है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस?
अरे वाह।
हाँ।
और सोचिए, दुनिया की सबसे जानी मानी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब OED, उसके दूसरे संस्करण का जो टाइपोग्राफिक डिजाइन था, उसमें लूना का बहुत अहम योगदान था।
कमाल है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का संगम।
बिल्कुल। और यही चीज उनके नजरिए को बहुत अनोखा बनाती है।
कैसे?
वो टाइपोग्राफी को सिर्फ सुंदर अक्षरों की कला के तौर पर नहीं देखती। उनके लिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है, एक फंक्शनल डिसिप्लिन।
फंक्शनल मतलब जिसका कोई उद्देश्य हो।
हाँ, उनका मानना है कि टाइपोग्राफी का असली मकसद है पाठक की मदद करना, उसे उलझाना नहीं।
सही बात है। तो उनकी किताबों का फिर मूल विचार क्या है? लूना असल में कहना क्या चाह रही हैं?
देखिए, लूना का सबसे बड़ा तर्क ये है कि टाइपोग्राफी सिर्फ फॉन्ट चुन लेना भर नहीं है।
हाँ।
ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, मतलब कई परतों वाली व्यवस्था है। इसका असली लक्ष्य है लिखित भाषा को पढ़ने और समझने में ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाना, प्रभावी बनाना।
अच्छा, तो ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जैसे सड़कें या पुल होते हैं।
हाँ बिल्कुल, एक अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो तय करता है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे पचाते हैं।
और वो इस सवाल की तह तक जाती हैं कि कैसे, मतलब अक्षरों की बनावट, शब्दों के बीच की दूरी।
हाँ, लाइनों का फासला, पेज का लेआउट, मतलब छोटे से कॉमा से लेके पूरी किताब की संरचना तक,
सब कुछ।
हाँ, सब कुछ मिलकर स्पष्टता, अर्थ और पढ़ने का एक सहज अनुभव कैसे रचते हैं। लूना इसे एक संज्ञानात्मक उपकरण कहती हैं।
कॉग्निटिव टूल मतलब दिमाग के लिए एक औजार।
एक ऐसा टूल जो हमारे दिमाग को जानकारी समझने में मदद करता है। ये भाषा की जो अमूर्त दुनिया है ना, और हमारी आंखों की जो भौतिक दुनिया है, उसके बीच एक पुल जैसा है।
दिलचस्प है, उनका मकसद भी बड़ा दिलचस्प है। वो चाहते हैं कि हम सब में टाइपोग्राफिक साक्षरता बढ़े,
टाइपोग्राफिक लिटरेसी।
हाँ
हाँ, मतलब सिर्फ डिजाइनर ही नहीं बल्कि हर कोई जो पढ़ता है या लिखता है, उसे ये समझ होनी चाहिए कि टेक्स्ट कैसे काम करता है।
अच्छा।
उनकी किताबें हमें अक्षरों की बनावट की बारीकियों से लेकर पेज लेआउट, इतिहास, तकनीक और यहाँ तक कि पढ़ने के मनोविज्ञान की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती हैं।
तो चलिए इस यात्रा पर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे बुनियादी चीज से, अक्षर।
हाँ,
से।
हाँ बिल्कुल, अक्षर से शुरू करते हैं। लूना अक्षरों की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी पर बहुत ध्यान देते हैं।
एनाटॉमी
हाँ
जैसे हमारे शरीर की होती है।
हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। शब्द शायद थोड़े टेक्निकल लगे लेकिन मतलब समझना जरूरी है। जैसे सेरिफ,
सेरिफ
वो जो अक्षर के किनारों पर छोटी सी डंडी या पैर जैसा होता है, जैसे टी या आई में।
बिल्कुल वही। फिर असेंडर्स वो हिस्सा जो एच या डी जैसे अक्षरों में ऊपर की ओर जाता है।
हाँ।
और डिसेंडर्स जो पी या जी में नीचे लटकता है। और एक बहुत जरूरी चीज है एक्स हाइट।
एक्स हाइट
ये क्या है?
ये एक्स ए ई जैसे जो छोटे अक्षर होते हैं ना।
हाँ।
उनकी मुख्य ऊंचाई।
अच्छा, और ये सिर्फ दिखने में सुंदर लगने के लिए नहीं है ना, इनका कोई और मकसद भी है।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ डिजाइन की बातें नहीं है, इनका सीधा असर पढ़ने पर पड़ता है।
कैसे?
लूना बताते हैं कि यही चीजें हमें अक्षरों को तेजी से पहचानने में मदद करती हैं।
हाँ।
और शब्दों को एक साथ पढ़ने में भी।
ओह, दिलचस्प बात है। और ये भी है शायद कि इन आकारों का इतिहास लिखने के औजारों से जुड़ा है।
हाँ, ये भी एक बहुत रोचक पहलू है। सोचिए, पत्थर पर छेनी से लिखना या कागज पर कलम चलाने का तरीका, इसी ने तो अक्षरों को उनकी शक्ल दी है धीरे धीरे। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई अक्षर की बात, अब उन बारीकियों पर आते हैं जिन्हें माइक्रो टाइपोग्राफी कहते हैं। यहाँ लूना किस चीज पर जोर देती हैं?
यहाँ लूना स्पेसिंग यानी जगह के महत्व पर बहुत जोर देते हैं।
स्पेसिंग, अक्षरों और शब्दों के बीच की जगह।
हाँ, जरा सी जगह कम या ज्यादा होने से पढ़ने का पूरा अनुभव बदल सकता है।
सच में इतना फर्क पड़ता है?
हाँ जी, जैसे केयरनिंग है।
केयरनिंग,
हाँ ये शब्द सुना है मैंने।
ये वो है ना जो दो खास अक्षरों के बीच की दूरी एडजस्ट करते हैं, जैसे ए और वी के बीच या टी और ओ।
बिल्कुल सही, ताकि वो देखने में सही लगे, चिपके हुए या बहुत दूर ना लगे। फिर है ट्रैकिंग।
ट्रैकिंग,
ये पूरी लाइन या पैराग्राफ में सभी अक्षरों के बीच की ओवरऑल दूरी को थोड़ा कम या ज्यादा करना है।
अच्छा, मतलब एक साथ सबको थोड़ा फैलाना या सिकोड़ना।
हाँ, और फिर है लीडिंग।
लीडिंग,
ये लाइनों के बीच की दूरी है, वर्टिकल स्पेस। एकदम सही, दो लाइनों के बीच की खड़ी दूरी। अभी सुनने में छोटी छोटी बातें लगती है ना।
हाँ, लगती तो है,
पर लूना दिखाते हैं कि यही सब मिलकर टेक्स्ट की बनावट यानी टेक्स्चर और पठनीयता यानी रीडेबिलिटी तय करते हैं।
और यहाँ एक जरूरी फर्क भी है शायद, पठनीयता यानी रीडेबिलिटी और सुपाठ्यता यानी लेजिबिलिटी के बीच।
हाँ बिल्कुल, लूना इस पर भी बात करते हैं। पठनीयता का मतलब है कि टेक्स्ट कितनी आसानी और आराम से पढ़ा जा रहा है, मतलब फ्लो कैसा है। जबकि सुपाठ्यता का मतलब है कि अलग अलग अक्षर कितने साफ पहचाने जा रहे हैं, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा।
अच्छा, दोनों ही जरूरी है पर अलग अलग तरह से। जैसे कोई बहुत सजावटी फॉन्ट हो तो शायद अक्षर पहचान में आ रहे हो यानी सुपाठ्य हो।
हाँ।
पर उससे लंबी कहानी पढ़ना मुश्किल हो यानी पठनीय न हो।
बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये तो हुई माइक्रो लेवल की बातें, अब जरा बड़े कैनवस पर देखें, पूरा पेज या स्क्रीन, जिसे मैक्रो टाइपोग्राफी कहते हैं। यहाँ लूना क्या कहते हैं?
यहाँ लूना ग्रिड सिस्टम के बहुत बड़े समर्थक हैं।
ग्रिड सिस्टम, ये तो डिजाइन में काफी सुना है, मतलब लाइनों का जाल जैसा।
हाँ, पर ग्रिड का मतलब कोई सख्त ढांचा या पिंजरा नहीं समझना चाहिए। ये जानकारी को व्यवस्थित करने, स्थिरता लाने और एक साफ सुथरा लुक देने का एक लचीला तरीका है। सोचिए, जैसे किसी शहर की सड़कें होती है ना।
हाँ।
वैसे ही पेज पर एक अदृश्य ग्रिड होता है जो टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग सबको अपनी सही जगह पर रखने में मदद करता है।
अच्छा, इससे क्या फायदा होता है पाठक को?
इससे एक बहुत जरूरी चीज हासिल होती है, पदानुक्रम, हायरार्की।
पदानुक्रम मतलब क्या ज्यादा जरूरी है क्या कम?
बिल्कुल, पाठक को एक नजर में समझ आ जाता है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे कम क्या है सब हेडिंग, और फिर मुख्य जानकारी कहाँ है बॉडी टेक्स्ट।
तो ग्रिड हमारी आंखों को गाइड करता है, एक तरह से बताता है कि पहले कहाँ देखो फिर कहाँ जाओ।
करता है, दिमाग पर बोझ कम पड़ता है।
और इस मैक्रो लेवल पर एक और चीज है जिसका जिक्र जरूरी है, खाली जगह, व्हाइट स्पेस।
हाँ, व्हाइट स्पेस, अक्सर लोग इसे बेकार छूटी हुई जगह समझ लेते हैं, पर लूना इसे डिजाइन का एक एक्टिव और बहुत शक्तिशाली तत्व मानते हैं।
एक्टिव मतलब वो कुछ काम करती है?
हाँ बिल्कुल, मार्जिन, पैराग्राफ के बीच की खाली जगह, टेक्स्ट के आसपास की जगह, ये सब मिलकर टेक्स्ट को सांस लेने की जगह देते हैं। ये अव्यवस्था कम करते हैं, पठनीयता बढ़ाते हैं और पाठक का ध्यान भटकाने के बजाय उसे सही जगह फोकस करने में मदद करते हैं।
इसका कोई उदाहरण?
सोचिए, एक सरकारी फॉर्म होता है ना जो एकदम ठसा ठस भरा होता है।
हाँ हाँ बिल्कुल,
मुश्किल होती है पढ़ने में।
और दूसरी तरफ एक कविता की किताब देखिए, कितनी खुली खुली हवादार होती है।
हाँ, बहुत फर्क होता है दोनों में। व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल कितना अलग है और कितना प्रभावी, ये सामग्री और पाठक की जरूरत पर निर्भर करता है। जैसे लूना का ऑयली वाला अनुभव था, डिक्शनरी में जगह बचाना जरूरी था तो लेआउट घना था, पर सामान्य किताब में खुलापन चाहिए होता है।
सही बात है। अच्छा, अब अगर हम कई पन्नों वाले दस्तावेजों की बात करें, जैसे किताबें, वेबसाइट्स या लंबी रिपोर्ट्स, तो चुनौती और बढ़ जाती होगी।
हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक पेज अच्छा दिखना काफी नहीं है, पूरे दस्तावेज में एक कंसिस्टेंसी, एक सुसंगत अनुभव बनाना जरूरी है।
तो उसके लिए क्या तरीके हैं?
यहाँ कुछ और तत्व काम आते हैं, जैसे रनिंग हेड्स।
रनिंग हेड्स, वो जो हर पेज के ऊपर टेक्स्ट दिखता है, किताब का नाम या चैप्टर का नाम।
हाँ वही। फिर पेज नंबर, फोलियोज, जो हमें बताते हैं कि हम कहाँ हैं। हेडिंग्स की एक जैसी स्टाइल होनी चाहिए
ताकि पता चले कि ये उसी लेवल की जानकारी है।
बिल्कुल, और जाहिर है सामग्री की तालिका यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स, ये सब मिलकर पाठक को नेविगेट करने में मदद करते हैं, जैसे दस्तावेज का जीपीएस सिस्टम हो।
हाँ, ताकि पाठक भटके नहीं, उसे पता रहे कि वो कहाँ है और कहाँ जा सकता है।
बिल्कुल।
ये सब तो डिजाइन की बातें हुई, लेकिन लूना इतिहास और तकनीक के जुड़ाव पर भी काफी जोर देते हैं, है ना? मतलब टाइपोग्राफी हमेशा से ऐसी नहीं थी।
हाँ, और ये सफर बहुत ही रोमांचक है। सोचिए गुटेनबर्ग और उनके मूवेबल टाइप ने क्या क्रांति ला दी थी।
हाँ, छपाई बड़े पैमाने पर संभव हुई, ज्ञान का प्रसार हुआ।
फिर आई लिनोटाइप और मोनोटाइप जैसी जटिल मशीनें, उनसे टाइप सेटिंग की रफ्तार बहुत तेज हो गई। फिर फोटो टाइप सेटिंग आई, उसने अक्षरों को धातु के भारी टुकड़ों से आजाद कर दिया, उन्हें रोशनी और फिल्म पर ले आए, और फिर आई डिजिटल क्रांति।
पर्सनल कंप्यूटर, एडोबी का पोस्टस्क्रिप्ट लैंग्वेज, डिजिटल फॉन्ट्स, इसने तो जैसे टाइपोग्राफी को हर किसी की पहुंच में ला दिया।
अब कहती हैं
क्या?
वो कहती हैं कि हर तकनीकी छलांग ने सिर्फ टाइप बनाने का तरीका नहीं बदला, बल्कि ये भी बदला कि क्या क्या संभव है। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत हैं, स्पष्टता, पठनीयता, संरचना, पदानुक्रम, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि शायद और भी ज्यादा।
अच्छा, मतलब डिजिटल तकनीक ने टाइपोग्राफी के सिद्धांतों को खत्म नहीं किया?
बिल्कुल नहीं, बल्कि उन दायरों को और बढ़ा दिया है जहां इन्हें लागू करना है। अब हमें छोटी स्क्रीन के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए, अलग अलग डिवाइस के लिए डिजाइन करना पड़ता है।
इसका कोई अच्छा उदाहरण है?
हाँ, स्टैनली मॉरिसन और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को ही देख लीजिए।
टाइम्स न्यू रोमन, ये तो बहुत कॉमन फॉन्ट है।
हाँ, पर ये किसी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए नहीं बना था, ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए डिजाइन किया गया था।
क्या समस्या थी?
लंदन का जो द टाइम्स अखबार था, उसे तेज गति वाली नई प्रिंटिंग प्रेस पर छापना था, और ये भी सुनिश्चित करना था कि वो पढ़ने में आसान रहे। तो तकनीक ने एक जरूरत पैदा की और टाइपोग्राफिक डिजाइन ने उसका समाधान दिया।
वाह, तो तकनीक और डिजाइन साथ साथ चलते हैं?
बिल्कुल, और घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, पाठक पर। लूना का पूरा नजरिया पाठक केंद्रित है, यूजर सेंटर्ड।
मतलब टाइपोग्राफर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि पाठक कौन है और किस संदर्भ में पढ़ रहा है।
हाँ, क्या वो आराम से कुर्सी पर बैठकर उपन्यास पढ़ रहा है, या किसी भीड़ भरी बस में खड़े होकर फोन पर जरूरी जानकारी ढूंढ रहा है,
या शायद किसी दवा की शीशी पर छोटे अक्षरों में लिखे निर्देश समझने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल, हर स्थिति में जरूरतें अलग होती हैं। लूना पढ़ने के पीछे के विज्ञान की भी बात करती हैं, कैसे हमारी आंखें पेज पर कूदती फांदती हैं, जिन्हें सकैड्स कहते हैं, और फिर कुछ पलों के लिए रुकती हैं, जिन्हें फिक्सेशंस कहते हैं।
अच्छा।
हाँ, और अच्छी टाइपोग्राफी इस पूरी प्रक्रिया को सहज बनाती है, कम थकाने वाली बनाती है।
तो अगर हम लूना के काम के मुख्य विषयों और संदेशों को समेटें, तो क्या बातें निकल कर आती हैं?
पहली और शायद सबसे अहम बात तो यही है कि टाइपोग्राफी एक अदृश्य कला है, एक अदृश्य बुनियादी ढांचा।
अदृश्य मतलब?
मतलब जब ये अच्छी होती है तो हमें पता भी नहीं चलता, ये बस अपना काम करती है, पाठक को सीधे सामग्री से जोड़ना। इसकी सफलता इसी में है कि ये खुद पर ध्यान न खींचे।
सही बात है।
अच्छी टाइपोग्राफी पर्दे के पीछे रहती है। और दूसरा मुख्य संदेश?
दूसरा है फंक्शन पहले, फॉर्म बाद में। फंक्शन ओवर फॉर्म,
मतलब
काम पहले, दिखावा बाद में।
हाँ, सुंदरता अच्छी है, पर टाइपोग्राफी का पहला लक्ष्य है स्पष्टता और पठनीयता। हर डिजाइन निर्णय का एक तार्किक कारण होना चाहिए, ये पाठक की मदद कैसे कर रहा है, या ये सिर्फ फैशनेबल दिखने के लिए है।
तीसरा अहम विचार क्या है?
तीसरा है कि टाइपोग्राफी प्रणालियों की एक प्रणाली है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स।
सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, ये थोड़ा जटिल लग रहा है।
मतलब छोटी छोटी बारीकियां जैसे अक्षर स्पेसिंग जिसे माइक्रो कहते हैं, बड़ा लेआउट जैसे पेज ग्रिड मैक्रो, और पूरे दस्तावेज की संरचना को प्रभावित करती हैं।
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एक चीज ठीक नहीं तो सब गड़बड़।
कुछ ऐसा ही। चौथा है प्रौद्योगिकी और परंपरा का संतुलन। टाइपोग्राफी का एक लंबा इतिहास है जिस पर वो टिकी है, लेकिन ये लगातार नई तकनीकों और जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालती भी रहती है।
ये जड़ नहीं है, जीवित है।
बिल्कुल। पांचवा है सांस्कृतिक संदर्भ और अर्थ। ये बहुत दिलचस्प है।
हाँ, ये कैसे?
टाइपफेस और लेआउट सिर्फ अक्षर नहीं दिखाते, वो अनकहे संदेश भी देते हैं। कोई फॉन्ट भरोसेमंद लग सकता है, कोई आधुनिक, कोई पारंपरिक।
हाँ, जैसे शादी के कार्ड का फॉन्ट अलग होता है और किसी सरकारी नोटिस का फॉन्ट बिल्कुल अलग।
बिल्कुल, वो अलग अलग फीलिंग, अलग अलग संदेश देते हैं। टाइपोग्राफी कभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होती।
और छठा संदेश जो शायद इन सबका निचोड़ है,
वो है उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण, यूजर सेंटर्ड अप्रोच। सब कुछ अंततः पाठक के लिए है, उसके पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाना ही अंतिम लक्ष्य है।
इसका कोई भारतीय उदाहरण सोच सकते हैं?
हाँ, जैसे कई बार हम देखते हैं सरकारी वेबसाइट या फॉर्म की टाइपोग्राफी इतनी जटिल होती है कि जानकारी ढूंढना या फॉर्म भरना ही एक सिरदर्द बन जाता है।
हाँ, होता है अक्सर।
वहीं कुछ आधुनिक ऐप्स या वेबसाइट्स इतनी साफ और सहज होती हैं कि इस्तेमाल करना आसान लगता है। ये फर्क अक्सर अच्छी पाठक केंद्रित टाइपोग्राफी का ही होता है।
तो लूना के काम से कुछ ऐसे विचार निकलते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद उनके सीधे कोट्स ना हो पर उनके तर्कों का सार। जैसे पहला विचार है, टाइपोग्राफी मानव भाषा को एक स्थायी दृश्य रूप देने का शिल्प है।
गहरा विचार है। मतलब ये सिर्फ अक्षर से जाना नहीं है, ये हमारे विचारों को, हमारी भाषा को समय और स्थान के पार ले जाने का तरीका है, उसे टिकाऊ बनाने का।
हाँ, इसके बिना ज्ञान का संचय और प्रसार कितना मुश्किल होता। दूसरा विचार है, अच्छी टाइपोग्राफी अदृश्य होती है। यह पाठक को प्रस्तुति से विचलित हुए बिना सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने देती है।
ये विरोधाभास मुझे बहुत पसंद है। मतलब टाइपोग्राफी का लक्ष्य है खुद को मिटा देना, ताकि पाठक और सामग्री के बीच कोई बाधा ना रहे। ये एक विनम्र सेवा है, शो ऑफ नहीं।
तीसरा विचार, हर टाइपोग्राफिक पसंद का सांस्कृतिक वजन होता है और यह पाठ की शाब्दिक सामग्री से बड़े अर्थ संप्रेषित करता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे डिजाइन विकल्प कभी भी मासूम नहीं होते। हम जो फॉन्ट चुनते हैं, जो लेआउट बनाते हैं, वो हमारे संदेश के बारे में बहुत कुछ कहता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। एक तरह की नॉन वर्बल भाषा है ये।
और चौथा विचार, डिजिटल तकनीक ने टाइपोग्राफिक सिद्धांतों की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया है, इसने उन संदर्भों का विस्तार किया है जहां उन्हें लागू किया जाना चाहिए।
ये भविष्य की ओर देखने वाला विचार है। स्क्रीन, ऐप्स, वेबसाइट्स, ई रीडर नए माध्यम आ गए हैं, लेकिन स्पष्टता, पठनीयता, संरचना के मूल सिद्धांत अभी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हमें बस उन्हें इन नए संदर्भों में लागू करना सीखना होगा।
सही है। तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आम आदमी के लिए क्या है इसमें?
अरे बहुत तरीकों से। पेशेवर दुनिया में सोचिए, अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है या अपनी कंपनी की ब्रांडिंग पर काम कर रहा है, सही टाइपोग्राफी आपकी बात को ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा पेशेवर बना सकती है। सिर्फ फॉन्ट बदलने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। एक खराब फॉन्ट पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है।
और शिक्षा में?
शिक्षा में तो इसका बहुत महत्व है। पाठ्य पुस्तकें, नोट्स, ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल, अगर इन्हें अच्छी टाइपोग्राफी के साथ डिजाइन किया जाए तो छात्रों के लिए पढ़ना, समझना और याद रखना आसान हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया कम बोझिल और ज्यादा प्रभावी बन सकती है।
खासकर छोटे बच्चों या विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए तो ये और भी जरूरी होगा।
बिल्कुल। और डिजिटल दुनिया में तो इसकी भूमिका एकदम सेंट्रल है। वेबसाइट और ऐप का पूरा यूजर एक्सपीरियंस काफी हद तक टाइपोग्राफी पर निर्भर करता है।
हाँ, स्क्रीन पर पढ़ना वैसे ही आंखों के लिए ज्यादा थकाने वाला होता है।
बिल्कुल। ऐसे में अगर टेक्स्ट पढ़ने लायक ना हो, अलग अलग डिवाइस पर ठीक से ना दिखे, तो लोग तुरंत ऐप या वेबसाइट छोड़कर चले जाएंगे। अच्छी टाइपोग्राफी यूजर को जोड़े रखती है।
और व्यक्तिगत जीवन में क्या हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं?
अनजाने में ही सही पर करते हैं। अपना रेज्यूमे बनाते समय सोचते ना कि कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करें ताकि वो प्रोफेशनल लगे।
हाँ, सोचते तो हैं।
कोई पर्सनल ब्लॉग या प्रोजेक्ट बनाते समय, यहाँ तक कि अपने किंडल या ई रीडर पे फॉन्ट साइज और स्टाइल एडजस्ट करते समय भी हम टाइपोग्राफिक निर्णय ले रहे होते हैं।
सही कहा, और ये शायद समावेशी डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी जरूरी है।
हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है, इंक्लूसिव डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी। अच्छी टाइपोग्राफी ये सुनिश्चित करती है कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनकी अलग अलग जरूरतों और क्षमताओं के बावजूद, जैसे कम नजर वालों के लिए बड़े और स्पष्ट फॉन्ट का विकल्प देना।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि टाइपोग्राफी कितनी सूक्ष्म, मतलब कितनी सटल, लेकिन कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। हम इस पर ध्यान नहीं देते, पर यह लगातार हमारे पढ़ने और समझने के अनुभव को आकार दे रही होती है। ये वाकई एक अदृश्य कला है।
हाँ बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि टाइपोग्राफी की थोड़ी बहुत समझ, जिसे लूना टाइपोग्राफिक साक्षरता कहती है, वो सिर्फ डिजाइनरों के लिए नहीं, हम सबके लिए जरूरी है।
सबके लिए?
हाँ, आज की दुनिया में जहां हम सूचना और टेक्स्ट के समंदर में तैर रहे हैं, ये समझना कि टेक्स्ट को कैसे प्रस्तुत किया गया है, ये संचार को गहराई से समझने का एक जरूरी हुनर बन गया है। ये सिर्फ शब्द पढ़ना नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे के डिजाइन को भी देखना है।
बिल्कुल, ये एक तरह से विचारों को संरचना देने और दुनिया को समझने का एक और लेंस है, एक और नजरिया।
तो अगली बार जब हम कुछ पढ़ रहे हों, चाहे वो किताब हो, वेबसाइट हो या सड़क का कोई साइन, एक पल रुककर सोचें, यहाँ टाइपोग्राफी कैसे काम कर रही है? क्या ये हमारी मदद कर रही है या हमारे रास्ते में आ रही है? ये छोटी सी जागरूकता भी हमारे देखने का नजरिया बदल सकती है।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।